ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदिरयेत् मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंध के दूसरे अध्याय का श्लोक क्रमांक 14। यो असौ त्वया कर सरोज हताः पतंगो दिक्षु भ्रमन् भ्रमत ए जयते अक्षिणि मे मुक्तं नते स्मरसि वक्र जटावरुद्धं कष्टो अनिलो हरति लंपट एष निविं। योऽसौ त्वया कर सरोज हत पतंगो दिक्षु भ्रमन् भ्रमत ए जयते क्षिणि मे मुक्तं नते स्मरसि वक्रजटावरुद्धं कष्टो नीलो हरति लंपट एष निविं। अच्छा, दूसरे स्वर में गाते हैं। योऽसौ त्वया कर सरोज हत पतंगो दिक्षु भ्रमन् भ्रमत ए जयति क्षिणि मे मुक्तं नते स्मरसि वक्रजटावरुत्थम् कष्टो नीलो हरति लंपट एष निविं। पाठ कीजिए।
Thank you.
कर्नल जी पढ़िए, कर्नल जी आप पंकज जी गाओ गाओ माताएं और कोई और कोई पढ़ना चाहती है? ओके शब्दानुवाद यह जो असौ वह त्वया तुम्हारे द्वारा कर सरोज कमल के समान करवाली हतः आहत पतंगः गेंद दिक्षु समस्त दिशाओं में भ्रमण घूमते हुए भ्रमतः अस्थिर ए जयते विक्षुब्ध करता है अक्षिणी नेत्रों को मैं मेरे मुक्तम बिखरे हुए नहीं ते तुम्हारा स्मरसि क्या तुम्हें शुद्ध नहीं है वक्र घुंघराले जटा केशों का बरुथम समूह कष्ट कष्टदायी अनिल वायु हरती वहाँ ले जाता है लंपट धूर्त एषा वह निबिम अधुवस्त्र। अनुवाद और तात्पर्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। मेरा मन पहले से ही चंचल है और तुम इस गेंद को अपनी कमल सदृश हथेली से इधर उधर फेंक कर मेरे नेत्रों को विक्षुब्ध कर रही हो। तुम्हारे घुंघराले केश अब बिखरे हुए हैं किंतु तुम्हें उनको संभालने की कोई सुधि नहीं है। तुम इन्हें संभाल क्यों नहीं लेते? यह धूर्त वायु स्त्रियों में आसक्त लंपट पुरुष के समान तुम्हारे अधोवस्त्र को उठाने का प्रयत्न कर रहा है। क्या तुम्हें इसकी खबर तक नहीं है? मेरे साथ दोहराओगे? मेरा मन पहले से चंचल है और तुम इस गेंद को अपने कमल सदृश हथेली से इधर उधर फेंक कर मेरे नेत्रों को विक्षुब्ध कर रही हो। तुम्हारे घुंघराले केश अब बिखरे हुए हैं किंतु तुम्हें उनको संभालने की सुधि नहीं है। तुम इन्हें संभाल क्यों नहीं लेती? यह धूर्त वायु स्त्रियों में आसक्त लंपट पुरुष के समान अधो वस्त्र को उठाने का प्रयत्न कर रहा है। क्या तुम्हें इसकी खबर नहीं है? तात्पर्य, पूर्वचित्त अपने हाथों में गेंद लिए हुए खेल रही थी जो उसकी कमल सदृश हथेली में पकड़े एक अन्य कमल पुष्प सा लग रहा था। इधर उधर गति करने से उसके केश शिथिल हो गए थे और उसका निवि बंधन खुल रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो धूर्त वायु उसे नग्न करना चाह रहा हो। फिर भी उसने अपने बाल संभालने या अपना वस्त्र संभालने की कोई परवाह नहीं की। अग्निध्र इस वाला की अनावृत सुंदरता का दर्शन करना चाह रहा था, अतः उसके हाव भाव से उसके नेत्र चंचल हो उठे। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। आप सभी भक्तों का हम सादर स्वागत करते हैं। परम पूज्य श्री भक्ति सारु स्वामी महाराज जी का आज व्यास पूजा महोत्सव है और उनका जो भी कार्यक्रम घोषित किया गया है तो आप सभी आइए समय पर। शायद मुझे लगता है 10:30 बजे भजन कीर्तन शुरू होगा यहीं से, यहीं पर। बहुत ही पुण्यतिथि है हमारे इस्कॉन में। भक्तिचारू महाराज अपनी विनम्रता और मीठी वाणी के लिए बहुत जाने जाते हैं। अगर किसी को हम्बलनेस सीखना है, विनम्रता सीखनी है, तो महाराज जी के सानिध्य में रहे। और बहुत स्वीट बोलते हैं, बहुत मीठा, बहुत मीठा। एक शब्द सुनने से मन करण तृप्त हो जाता है। तो ऐसे महापुरुष को नमन करते हुए आज का ये भागवत कार्यक्रम शुरू करते हैं। प्रसंग ये 5वां स्कंद का है। प्रियव्रत महाराज जी के पुत्र अग्निध्र की कथा। अग्निध्र तपस्या करने गए थे। ब्रह्मा जी ने उनके लिए एक अप्सरा भेजी जिस अप्सरा का नाम था पूर्वचित्ते। वैसे स्वर्गलोक में ढेर सारी अप्सराएं हैं। अप्सरा शब्द का अर्थ होता है स्वर्गलोक की नृत्यांगनाएं। जो नृत्य करने वाली होती है उनको अप्सरा कहते हैं और देखने में बहुत सुंदर होती है। वैसे ये नॉर्मल आइडिया यही है कि सुंदर पुरुष अथवा सुंदर स्त्री नृत्य करे तो सभी लोग देखेंगे। अगर देखने में सुंदर नहीं है, अगर नृत्य करे कौन देखेगा? कोई नहीं देखेगा। इसलिए स्वर्गलोक में विशेषता ये बनाई गई है अप्सराएं ये कई अप्सराएं हैं ऐसे ही, केवल एक नहीं है, सबसे सुंदर अप्सरा जो बेस्ट गुड बेटर बेस्ट, वो बेस्ट अप्सरा कौन है? सबसे सुंदर, सबसे सुंदर आप लोगों को पता है?
उर्वशी
सबसे बेस्ट है। किसने बनाई थी? हाँ, भगवान नारायण ने अपने उरु से उनको प्रकट किया था। जो नारायण से प्रकट हो जाए वो तो सुंदर होगी ही, उर्वशी। और एक अप्सरा का नाम बोलो, तुम्हारे लिए आएगी। मेनका, मेनका। और एक अप्सरा का नाम बोलो, पूर्वचित्ति, उर्वशी, मेनका और रंभा। रंभा इनको ज्यादा याद है। और एक अप्सरा का नाम तिलोत्तमा। हाँ, और एक अप्सरा का नाम घृताची। वैसे ज्यादा इनके नाम याद रख के क्या करेंगे, वैसे थोड़े बहुत तो याद होना ही चाहिए। उर्वशी, रंभा, मेनका, तिलोत्तमा, घृताची, पूर्वचित्ति, ये सब अनेक अनेक अप्सराएं हैं। पर अग्निध्र के लिए जो अप्सरा भेजी गई थी उनका नाम था पूर्वचित्ति। देखने में बहुत सुंदर थी और वो गेंद खेल रही थी। गेंद समझते हैं, बॉल, लड़कियां फेंकती हैं, बॉल खेलती थी, तो उसको देख करके अग्निध्र मोहित हो रहा है। अच्छा, ध्यान देना चाहिए, अग्निध्र यहाँ जो बातें कर रहा है ये पागलों की बातें हैं। जैसे कि पागल होश खोकर के, बेसुध होकर के कोई इधर उधर की बोली बोले, ऐसी बोल है वो। आपके मन में ये प्रश्न नहीं आ रहा है कि ब्रह्मवेता मुनि, जहाँ ब्रह्मचर्या जिस शास्त्र में हो, ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश जिस शास्त्र में आता हो, उस ब्रह्मचर्या युक्त श्रीमद् भागवत में इस एक अप्सरा की सुंदरता का वर्णन क्यों है? क्या कारण, प्रश्न उठेगा ना। ऋषि कोई सामान्य नहीं है, द स्पीकर इज एक्सेप्शनल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। सुखदेव गोस्वामी भगवान के एक प्रकार से सत्यावेश अवतार है, ब्रह्मराथ जन का नाम है, और परीक्षित महाराज लिसनर, वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सामान्य श्रोता की कोटि में नहीं आते, प्रथम श्रोता। जाया सुत दारा गार पशु द्रविण बंधुसु राजी चाविकले चैव बिरुढ़ाम ममताम जहु। एक क्षण में, पलभर की देर नहीं लगी उनको त्याग करने में, सारा सब कुछ। कितने बड़े श्रोता होंगे, वक्ता एक्स्ट्राऑर्डिनरी, श्रोता एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और ग्रंथ श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानम धनम। ये पुराण नहीं है, ये पुराण तिलक है। तिलक पुराण इतना बढ़िया पुराण है, इतने बड़े वक्ता है, इतने बड़े श्रोता है, इन बातों की चर्चा किस लिए जी, किस लिए? आपका मन क्या कहता है? कहीं ना कहीं रहस्य है, रहस्य यही है। अग्निध्र भले ही कामासक्त हो, लेकिन इनका जो बेटा होगा नाभि, वो भगवान का मान। हिरण्यकश्यपु भले ही नास्तिक हो, लेकिन आस्तिक प्रहलाद के कारण उनकी ख्याति है। Isn't it? महान भक्त है। भगवान नरसिंहदेव ने कहा, प्रहलाद एक पिता किया, तुम्हारी 21 पीढ़ी का हम उद्धार कर दें। 21 पीढ़ी। इसलिए कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा तेन वसतिश्च धन्या नृत्यन्ति स्वर्गे पितरी पितेषां येषां कुले वैष्णव नामधेयः। जिसके कुल में, जिस माँ की गोद में एक वैष्णव पुत्र आ गया, ओहो, उस माँ की गोद कृतार्थ हो गई, वो पिता कृतार्थ हो गया, वसुंधरा जो धरा उसको धारण करती है वो धरा भाग्यशाली हो गई। ये विशेषता है। अग्निधर भले ही काम आ सकता हो, वो पितृलोक को गए। जानति देवव्रता देवान पितरन जानते पितृव्रता भूतानी जानति भूतेज्या जानति मज्जाजिनो पीमा। पूर्व चित्त को प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग सुख प्राप्त करने के लिए इनका ये पितृलोक को चले गए। पर कारण यही है भक्तों कि इनका जो पुत्र हुआ नाभि, वो भगवान के महान भक्त, और उनका जो पुत्र है ऋषभ, वो तो साक्षात अवतार है। सो एक कामासक्त व्यक्ति वर्णन कर रहा है अपने अपने भावी पत्नी का सौंदर्य। जो व्यक्ति कामासक्त होता है उसको कुछ नहीं दिखता। दीवान पश्यति उल्लू को काकन अक्तम न पश्यति। उल्लू को दिन नहीं दिखाई देता और कौवे को रात नहीं दिखाई देती, पर जो कामासक्त होता है वो दिन रात कुछ कुछ नहीं दिखाई देता। दीवान अक्तम न पश्यति। क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके सामने केवल एक ही वस्तु है, उसकी प्रेमिका। बस उसकी चाल, उसके ढाल, उसके उसका चितवन, उसके केस, उसका सौंदर्य, सारा कुछ अच्छा लगता है। वैसे शादी से पहले सब कुछ अच्छा लगता है। जिन्होंने प्यार किया है उनको सब पता है। विवाह वैसे राधा रानी भी कहती है, हे कृष्ण, वैसे विवाह से पहले सब कुछ अच्छा लगता था। रेवा रोधसी वेदसी तरुतले चेतः समुत्कंठ से। हम वो ही चाहती है, रेवा नदी हो। एक महाप्रभु रथ यात्रा में गाते थे, एक काव्य की गीत है ये। एक प्रियतमा अपने प्रिया से प्रिय से कह रही है, हे प्रिय, अब तुम वही हो, मैं वही हूं, अंतर इतना ही है कि तुम हमारे पति बन गए और मैं तुम्हारी पत्नी बन चुकी हूं। लेकिन पहले जो आनंद था वो रेवा नदी के किनारे, अब वो आनंद नहीं है। कुछ लोग तो बहुत हंस रहे हैं भीतर भीतर से, उनके जीवन में कहीं ना कहीं घटित हो। पंकज जी हंस रहे हैं। सो जीवन में ये सारी बातें हैं। विवाह से पहले एक पागलपन है। अग्निधर के मन में ये भाव है, वो उस स्त्री की सुंदरता से इतना मुग्ध है, वो पागल होकर के कहते हैं, यो असौ त्वया कर सरोज हत पतंग। आहा, हे देवी, तुम्हारी हाथ नहीं है, तुम्हारी कर नहीं है, तुम्हारी कर कमल है। भगवान के हाथ की तुलना, भगवान करके तुलना कमल से की जाती है। कर कमल, चरण कमल, नाभि कमल, नेत्र कमल, वदन कमल, नाभि कमल। लेकिन इनके आंखों में, इनकी दृष्टि में पूर्व चित्त की जो भुजाएं हैं वो कमल है। हे देवी, तुम्हारे कर कमल से जो पतंग, जो गेंद उछल रहा है, दिक्षु भ्रमन भ्रमत ए जयते क्षण में, तुम जब उस गेंद को लेकर के खेलती हो तो हमारा चित्तवन, हमारा चित्त डोल रहा है। तुम्हारी क्रीड़ा देख करके, तुम्हारे कंदुक आसक्त हाव भाव को देख करके हमारा मन, हमारा चित्त चंचल हो रहा है, देखने मात्र से चंचल हो रहा है। मुक्तम नते स्मरसि वक्र जटावरुथम। और खेलने के कारण, क्रीड़ा करने के कारण पूर्व चित्त के केस खुल गए थे, इधर उधर वो हो रहे थे। अग्निधर कह रहे हैं कि भाई, तुमको ये शुद्ध तक नहीं है कि तुम अपने केस बांधो, पर तुम केस नहीं बांधती हो। कष्टो अनिल, ये वायु बड़ा धूर्त है, ये तुम्हारे वस्त्र को उड़ा के ले जाना चाहता है। अर्थात एक प्रेमी के लिए अपने प्रेमिका का समस्त भाव, उनकी अंग भंगी बहुत आकर्षक प्रतीत होती है। इसीलिए शायद भर्तृहरि ने अपनी पत्नी, अपने प्रेमिका पिंगला के लिए श्रृंगार शतक लिखा। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के ज्येष्ठ भ्राता श्री भर्तृहरि महाराज, उनकी पत्नी पिंगला के लिए उन्होंने श्रृंगार शतक लिखा। जब उससे वैराग्य प्राप्त हुए फिर उन्होंने वैराग्य शतक लिखा। भारतवर्ष का ऐसा एक राजा हुआ है, एक साथ लिखा श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। दिक ताम च तम च इमम च माम च, तुमको धिक्कार है, मुझे धिक्कार है, इस मदन को धिक्कार है, संसार को धिक्कार है। ये वैराग्य शतक लिखा विक्रमादित्य के भाई भर्तृहरि ने। लेकिन ये वैराग्य कोई ऐसी चीज नहीं कि जल्दी आ जाएगी। पूर्व चित्त को भोग करने के लिए, प्राप्त करने के लिए अग्निधर पागल हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं। ये पागल का एक प्रलाप है, ये कोई अच्छी खासी बात नहीं है। उनकी दृष्टि में और कुछ नहीं है, सारा संसार केवल पूर्व चित्त में ही समेटा हुआ है। जहां भी देखता था वो पूर्व चित्त को ही देखता था, उसकी केश राशि, उसके नेत्र, उसकी भुजाएं, उसके वक्षस्थल, उसके नितंब, उसके चरणों की नुपुर, उनकी बोली, सब कुछ अग्निध्र को पागल बना रहा था। लेकिन मेरे मित्रों, इस प्रसंग का यहां पर रखा जाना, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही है कि एक ना एक दिन काम के कारण व्यक्ति पागल हो जाता है, और जिस नेत्र का प्रयोग उसको भगवान के लिए करना था, उस नेत्र का प्रयोग एक हाड़मांस के शरीर को देखने के लिए लगा देता है। हजारों संत हुए हैं, हजारों संत हुए हैं, और भागवत में खास करके कहा गया ये नेत्र का प्रयोग केवल भगवान के लिए ही होना चाहिए, अन्यथा हमारे पैर फिसल जाएगा। आप लोग सभी जानते हो, महान भक्त लोग हो, भक्ति की परिभाषा क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ भक्ति? भक्ति किससे कहते हैं? रूप गोस्वामी ने भक्ति की परिभाषा दी है, बोलिए कौन बोलेगा? तू मत बोल। यस, हाँ, भगवान में पूर्ण समर्पण एक श्लोक के माध्यम से रूप गोस्वामी ने कहा है। यस, ये उत्तमा भक्ति है। भक्ति की परिभाषा सबसे पहला श्लोक, यस पूरा बोलिए, यस बोध उन्होंने कह दिया, यस यस, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। सीधी परिभाषा है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, आवरण से रहित होकर। सर्वोपाधि, उपाधि माने आवरण, तरह तरह के आवरण है। आप आवरण समझते हो, पुरुष है, स्त्री है, हम ये ग्रेजुएट है, हम MD है, फलाने फलाने फलाने, दुनिया भर के आवरण हो सकते हैं। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, अर्थात त्रिगुण रहितम, तीनों गुणों से मिश्रण नहीं होना चाहिए, ज्ञान कर्म से रहित होना चाहिए। सर्व उपाधि से, सर्व आवरण से रहित होकर, ज्ञान कर्मादि से रहित होकर, अपने इंद्रियों से ऋषिकेश भगवान की जो सेवा की जाती है, उस सेवा का नाम है भक्ति। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। तो हमारी इंद्रियां कितनी है? 10 इंद्रियां हैं, 10ों में 5 मुख्य है और 5 गौण है। 5 इंद्रियों में 2 इंद्रियां प्रधान है, एक इंद्रिय है श्रवण और दूसरी इंद्रियां हैं दर्शन। ये पांचों में ये दोनों प्रधान है, श्रवण और दर्शन। यदि हम कान से सुनते हैं और आंखों से देखते हैं, ये इतनी बलवत्ती इंद्रियां हैं, चित्त में भगवान को आकर्षित करके बिठा देती, ये विशेषता है। और यदि नेत्र का हम गलत इस्तेमाल करते हैं, अजामिल ने एक बार एक दृश्य देखा था, बहुत ज्यादा नहीं देखा था, एक बार एक दृश्य देखा था, उसका पतन हो गया, एक बार, ओनली वंस इन हिज लाइफ टाइम पतन हो गया। इसलिए नेत्र का भरपूर प्रयोग केवल भगवान श्री कृष्ण के प्रतिविधान उनके सुंदर रूप राशि के दर्शन के लिए। भागवत में यहां तक निंदा कर दी गई है, बरहायते ते नयने नराणम लिंगानि विष्णु न निरीक्षतो जे पादो नृणाम तौद्रम जन्म भाजौ क्षत्राणि नानो ब्रजते हरिर्यौ। बरहायते ते नयने नराणम, बोले उनकी वो नेत्र आंखें नहीं है, नेत्र नहीं है। बोले क्या नेत्र है? बोले मोर पंख की आंखें। जैसे मोर पंख का नेत्र में दर्शन करने की शक्ति नहीं होती है, जो आंख श्री कृष्ण का दर्शन नहीं करती वो आंख आंख नहीं है, वो तो मोर पंख की एक छवि है। सोन का दे ऋषि उस व्यक्ति के निंदा करते हैं, कठोर निंदा करते हैं। बोले तुम आंख वाले नहीं हो, तुम्हारे आंख नहीं है, वो मोर पंख की एक छवि है। और जिनके पैर है भगवान के तीर्थ स्थानों का, वो पर्यटन नहीं करते, बोले वो पेड़ है, वो पैर नहीं है, वो पेड़ है। वृक्ष है, द्रुमजन्म भाजौ छत्राणी नानु ब्रजते हरिर्जो। आहा, भगवान ने हमको दो पैर दिए हैं भगवान के तीर्थों का भ्रमण करने के लिए, आंखें दी हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। मैंने दर्शन किया है, वास्तव में भारतवर्ष के जितने तीर्थ है श्री हरि की कृपा से प्राय हमने दर्शन कर लिए। बद्रीनाथ दर्शन किए, द्वारकाधीश का दर्शन किए, इधर दक्षिण काली का दर्शन किए, रामेश्वर का दर्शन किए, पर सबसे दर्शन का आनंद जो है ना वो भगवान जगन्नाथ के। एक ताली लगा दीजिए, ये जगन्नाथ जी के लिए मैंने कहा। वास्तव में दर्शन का सुख कहीं है वो जगन्नाथ जी का दर्शन। उड़ीसा के कुछ भक्त लोग हो इधर, कितने लोग हो? थोड़े ही, वैसे दो पांच है। आप चल सखी हम भी दर्शन करीवा उड़िया भले। एक सखी दूसरे से कहती है, अरे सखी चलो हम दर्शन करेंगे। कहाँ? बोले नील पर्वत पर जो कालिया बैठा है उसका हम दर्शन करेंगे। चल सखी हम भी दर्शन करीमा नीलगिरी कालिया को क्यों सुरपति बेस करिया छी गिरिवर तोलिया को से जे नयन तोरा सिर सुना सोता केरा केरा से जे नयन तोरा। ओडिया लोग समझते हूँ। चल सखी अम्भे दर्शन करी, अरे सखी चलो चलो भाग भाग करके चलो। कहाँ? नील पर्वत के अंदर बैठा है उस जगन्नाथ जी का दर्शन करते। वास्तव में वहां पर दो आनंद है, भोजन करके पेट बढ़ाओ और दर्शन करके आंख बढ़ाओ। चैतन्य महाप्रभु 12-12 घंटे दर्शन करते थे, मानो जगन्नाथ जी के नेत्र कमल और महाप्रभु के नेत्र भंवर। एक भंवर एक कमल में बैठ करके मधु चूस रहा है। दर्शन का आनंद और भोजन का आनंद श्री जगन्नाथ पुरी में ही है। हम लोग बड़े भाग्यशाली है उत्कल प्रदेश में पैदा हुए। हाँ, जीवन में अनेक बार जगन्नाथ जी के दर्शन किए। घर घर में वहां जगन्नाथ जी विराजमान करते हैं, घर घर में। आप पूछोगे फिर हम वृंदावन क्यों आएंगे? तो उन्होंने कहा, बोला हमारा घर है वृंदावन, चले जाओ वहां भजन करो, बीच बीच में आ जाना दर्शन करने के लिए, चले जाते हैं दर्शन करने के। नेत्रों का यही फल है मेरी माताओं, नेत्रों का यही फल है। अक्षणवताम फलमिदम न परम विदामह सख्य पसुन अनुविवेशयतोर वयसी वक्त्रम ब्रजेश सुतयोः अनुवेणुजुष्टम यैर्वा निपितम मनोरक्तम कटाक्षमुक्षम। वेणुगीत भागवत 10:21। गोपियों ने कहा, अरे सखी, नेत्रों का फल यही है कि भगवान ब्रजेश नंद महाराज जी के पुत्रों के मुखारविंद का दर्शन करना। अक्षणवताम फलमिदम न परम विदामह। अरे और कोई देखने वाली वस्तु भले कोई देख ले, प्रिया प्रीति प्रियतमा पुत्र सबको देख ले, पर हम तो समझते कि हमारे आंखों का फल है कि नंद नंदन के पुत्र का दर्शन करना। नंद नंदन के पुत्र बोले कैसा? बोले जब वो वेणु वादन करते हुए अपने संगी साथियों के साथ वृंदावन के अरण्य में प्रवेश करते, बरहापीडम नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासा कनक कपिशम वैजयंती चमालम रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ऐसे है प्रभु की रूप छटा है, जिस रूप माधुरी को दर्शन करने के लिए गोपियां तरसती थी, दिन रात उनको एक युग के एक पल भर का समय, एक क्षण उनको युग के समान प्रतीत हो रहा था इस रूप माधुरी को पीने के लिए। नेत्रों का यही फल है मित्र, ये जो प्रिया का दर्शन कर रहा है ये नेत्र का फल नहीं है, ये नेत्रों की बर्बादी है। आदि शंकराचार्य ने इसका निषेध किया है, नारिस्तन भारम जघन प्रदेशम दृष्ट्वा मागा मोहावेशम एतन मांस वासादि विकारम मनस विचिंतय बारम बारम भज गोविंदम मूढ़मते। नारीस्तन भारम जघन प्रदेशम दृष्ट्वा मांगा मोहावेशम। नारी का वक्षस्थल और उनके स्फीत नितंब देखकर तुम मोह में आविष्ट मत हो जा। क्यों? बोले ये तन मांस और वास है, ये गिद्ध नोचने वाला ये मांस और वस्त्र बस इसी से ढका हुआ है जो तुम्हारी बुद्धि को मोहित कर रहा है। इतन मांस वासादि विकारम, विकार माने परिवर्तन, जो तुमको सुंदरता दिखाई दे रही है वो केवल मांस का लेपन और वस्त्र का ढकन, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। यही है माया, यही है माया। अच्छा, थोड़े दर्शन शास्त्र की ओर प्रवेश कर जाते हैं। दर्शन शास्त्र यही कहते हैं, स्त्री और पुरुष में एक है दर्शक, एक है दृश्य। स्त्री अपने को दृश्य बनाना चाहती है और पुरुष अपने को दर्शक बनाना चाहता है। ध्यान देना, दृष्टा हम नहीं कह रहे, दर्शक और दृश्य। स्त्रियों में, लड़कियों में, बालिकाओं में एक स्वाभाविक ये भाव होता है, वो अपने को बहुत सजाती है, बहुत सजाती है। कह रहे यहाँ तो मैं नहीं देख रहा हूँ, जितने भक्त माताएं बैठी हैं अपने को सजाती है, क्योंकि उनको ज्ञान हो गया है। नहीं तो अक्सर आप बाहरी दुनिया में चले जाओ, आपको सज धज कलकर बहुत सुंदर ड्रेस में लड़कियाँ मिलेंगी। क्यों मिलती है? क्योंकि माया उनके भीतर ये बुद्धि भर देती है कि तुम दृश्य हो, दृश्य माने जो देखने योग्य हो, जिनको देखा जाए। और पुरुष के भीतर ये बुद्धि माया भरती है कि तुम दर्शक हो, तुम देखो। Isn't it? एक दृश्य का रोल बन धारण करता है एक जीव, और दूसरा जीव दर्शक बनता है। बस यही तो है, इसी को हृदय ग्रंथि कहते हैं, दृश्य और दर्शक, दृश्य और दर्शक, पर दोनों माया है। जो स्त्री अपने को जितना सजाती है वो उतनी माया में, वो अपने को दृश्य के रूप में पेश करना चाहती है, कि मुझे देखे। अच्छा बताओ, घर में कोई अपने को सजाता है? कोई नहीं सजाता, एक गामछा पहन करके चले जाते हैं। और घर में जो माता है वो भूतनी का एक ड्रेस डालती है, तो देखने योग्य नहीं होती है कि नहीं। तो घर में सामान्य स्थिति है, एक गामछा पहन लिया, लंगोटी मार लिया, बस जय राधे घर में, क्योंकि घर में कोई देखने वाला है नहीं, चार दीवार पे कौन देखने वाला है तुम। पर जब तुम बाजार जाओगे देखेगा, थोड़ा लिपस्टिक फिर लगा के फिर कहीं उसको पूछ देंगे, फिर ठीक ठाक भर के लगा, फिर उसको वो वाला काला थोड़ा तुम्हारा, फिर चश्मा को ठीक ठाक करे, फिर बैग को ठीक ठाक रखे। अरे मेरे भाई, अपने को दृश्य बना करके माया में तुमको तुम झोंक रहे हो अपने आप को। कोई भी स्त्री कोई भी महिला जब अपने को दृश्य के रूप में पेश करना चाहती है, वो माया के घन घन घोर चंगुल में है। ये अप्सराएं हैं, ये माया का है, ये प्रोडक्ट है। इसलिए कोई भी भक्त स्त्री कोई भी भक्त माताएं अपने को सजाने की कोई जरूरत नहीं, दृश्य मत बनाओ। अब जैसे आप दृश्य नहीं बनोगे, ये दर्शक नहीं बनेंगे। तो दर्शक नहीं रहा तो दृश्य नहीं रहा तो क्या रहा? दृष्टा। दृष्टा माने साक्षी भाव है, केवल साक्षी है, ना तो मैं देखने वाला हूं ना तो मेरे सामने कोई है, केवल एक वस्तु को हम देखेंगे। बसो मेरे नैन में यह जोरी, सुंदर श्याम कमल दल लोचन, संग वृषभानु किशोरी, मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, पीतांबर झकझोरी, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को काबर न मति थोरी। बसो मेरे नैनन में यह जोरी। हे प्रभु, सूरदास जी कहते हैं, हे लाला लाली, हे श्याम सुंदर राधा रानी, कृपा करके मेरे नेत्र पथ में बस जाओ। सबने यही बात की, क्योंकि नेत्र की बीमारी सबको पता है, वो दृश्य को देखना चाहता है, इसलिए ना रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। आदि शंकराचार्य ने कहा, जगन्नाथ स्वामी नैन पथ गामी भव तुम्हें, हे जगन्नाथ मेरे नैन पथ में तुम बैठ जाओ। तुम बैठ जाओगे तो फिर मेरे सामने और कोई दृश्य नहीं रहेगा। हे राधा श्याम सुंदर, आप मेरे नेत्र पथ में बैठ जाओ। तुम बैठ जाओगे और मेरे सामने कोई नहीं रहेगा। यदि आप ये ना करके कहीं आप दृश्य के पीछे भागे तो भागवत सावधान करती है। अदंति चैकम ग्रधम, बोले सुनो, इस संसार में लोभी मनुष्य अपने दृश्य के पीछे पागल हो जाता है। अदंति चैकम ग्रधमस्य एकम, बोले एक वस्तु भोग के पीछे वो वस्तु वो जीवात्मा भागता रहता है। पर जो मुनि होते हैं, जो परमंस होते हैं, वो इस दृश्य के पीछे नहीं भागते। ये दुनिया में जितने आप वृक्ष देख रहे हो, वो वृक्ष में एक व्यक्ति, एक वृक्ष विशेष में एक फल विशेष होता है। जैसे आम के वृक्ष का फल आम होता है, कटहल के वृक्ष का फल कटहल ही होता है, ताड़ का ताड़ होता है, लेकिन एक ऐसा वृक्ष है जिस वृक्ष में डबल फल लगते हैं। हाँ जी, ये विशेष वृक्ष है, आम भी होगा और कटहल भी होगा, ऐसा कौन सा वृक्ष है? अदंति चैकम ग्रध्रमस्य धीरा, बोले एक वृक्ष है संसार में, बताओ कौन सा वृक्ष है ये? हाँ, ये शरीर रूपी वृक्ष है। ये शरीर रूपी वृक्ष में दो फल फलते हैं, एक है सुखम एक है दुखम। ऐसा और कोई वृक्ष नहीं है संसार में जिसमें ये दो फल फले। एक वृक्ष आम का आम, खजूर का खजूर, लेकिन ये पेड़ भगवान ने बनाया, कितना विचित्र वृक्ष ये है। लाओ लाओ माता जी प्रसाद लाओ। धन्यवाद।
सो इस वृक्ष में दो फल है, एक सुख और दुख। अच्छा, इनके भोक्ता भी दो है। एक भोक्ता है जो हम लोग बैठे हुए हैं, जो संसार के पीछे पड़े हैं, हमारे हाथ में दुख के अतिरिक्त कुछ नहीं आता। अदंति चैकम फलमस्य गृद्धा बने ग्रामे चरा बने अरण्य वासा। एक तो अरण्य में रहते परमहंस मुनिगण जो सर्वथा इस संसार से रहित हो गए, लेकिन जो ग्रामे चरा है, जो सांसारिक व्यक्ति है, वो उस दुख रूपी फल को खाने के लिए पागल हो जाते हैं। संसार में समस्त पागल है। अच्छा, ऐसा नहीं कि हम अपने को छोड़ करके कहते हैं, नहीं, एकदम पागलपन है। नूनम प्रमत्तः कृते विकर्म जदिंद्रिय प्रत्यय अप्रणोति। इसलिए ये दो फल जो है, एक फल तो संसारी व्यक्ति, गृहस्थ व्यक्ति, जो व्यक्ति अत्यंत स्त्री में आसक्त हो जाता है, जिसके घर में भक्ति का नामोनिशान तक नहीं है, उनके हाथ में केवल दुख ही दुख आता है। अच्छा, एक चीज से हम समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी को भूख लगी, और भूख क्या है, दुख है, सुख है? भूख लगती है, और भूख क्या है, सुख है, दुख है? बताओ, दुख है। अच्छा, भूख के लिए आपको भोजन बनाना पड़ेगा, ये भोजन बनाना सुख है, दुख है? दुख है। अच्छा, भोजन बनाने के लिए पैसा कमाना पड़ेगा, वो सुख है या दुख है? दुख है। अच्छा, भोजन मान लीजिए खा लिया, खाने के बाद उसको पचाना पड़ेगा, पचा करके बाथरूम जाना पड़ेगा, वो सुख है या दुख है? हाँ जी, और सुख कहाँ है? इसलिए भागवत जी कहती है, अदंति चैकम, एक फल है दुख है, जिसको संसारी लोग पागलपन में खाता है। लेकिन एक होता है परमहंस और भक्त जो है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, प्रेम फल पाकी पड़ी। वो प्रेम फल को खा करके भक्त माला माल होता है, ना खाने की चिंता, ना पीने की चिंता, ना मरने की चिंता, ना जीने की चिंता। कभी कुछ हो जाए, किसी की चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं। इसलिए आंखों का, नेत्रों का एकमात्र फल है। चैतन्य महाप्रभु ने तो सनातन गोस्वामी से कहा, अक्षणो फलम त्वादृश दर्शनम ही तन्नो फलो त्वादृश गात्र संग, जिह्वा फलम त्वादृश कीर्तनम ही सुदुर्लभा भागवता ही लोके। हे सनातन गोस्वामी, तुम्हारा दर्शन करना ये नेत्रों का फल है, आपका कीर्तन करना ये जिह्वा का फल है, और आपका आलिंगन करना ये तन का फल है। क्योंकि संसार में भागवत बहुत ज्यादा नहीं मिलते, भागवत बहुत दुर्लभ होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों, मेरे मित्रों, जीवन की सुलभता, जीवन का पुरुषार्थ, जीवन का जो परम लाभ है, यदि हम नेत्रों को प्रयोग करते हैं, वो लाभ मिलने में हमको विलंब नहीं होता। और नेत्रों का प्रयोग किस लिए है? केवल भगवान के दर्शन, रूप दर्शन की बड़ी महिमा, भगवान के रूप मधुरिमा है। प्रत्येक नित्य नियमित जितना जितना हम रूप से, सांसारिक रूप से बचेंगे, उतना उतना हमारा भाव बढ़ेगा। अच्छा, यदि आपको स्त्री की बुराई, संसार की बुराई ऐसे कर दिया जाए, तब भी आपका मन विरक्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? केवल उसकी बुराई करने से मन विरक्त होगा, ऐसा कहीं प्रमाण नहीं। अच्छा, आपने तराजू देखा है? तराजू में मान लीजिए 1 किलो बैंगन है और 1 किलो उधर बटे, ठीक है ना? आप जब तराजू लेते हो और दोनों पलड़ा बिल्कुल बराबर में रहता है, आपको इधर भारी करना है, क्या करोगे? और बट डालोगे, और 100 ग्राम डाल दो वो नीचे चला जाएगा, और 100 ग्राम डाल दो नीचे चला जाएगा। जितना जितना ये नीचे जाएगा, उतना उतना ये वाला पलड़ा ऊपर उड़ जाएगा। ये बिल्कुल समीकरण है। वैसे ही हमारा मन एक ही तो है, इसमें ही वैराग है, इसमें ही राग है। इसके अंदर वैराग्य को प्रवेश कराने के लिए तुम वैराग्य, ये जो आदि शंकराचार्य ने कहा, नारिस्तन भारम जगन प्रदेशम काते कांता धनजन चिंता, अरे भाई तुम्हारे संसार में कौन है, इन सब बातों से वैराग्य होने वाला नहीं है। वैराग्य कैसे होगा? अब तराजू बनाओ। ये तराजू में क्या करो, चैतन्य चरितामृत की एक पंक्ति को याद करके आप उसको रटो। इस पंक्ति का आदर्श देखिए, कविराज गोस्वामी कहते हैं,
कृष्णेर चरणे यदि हय अनुराग, कृष्ण बिना अन्यत्र तार नाही रहे राग।
मेरे साथ गाइए,
कृष्णेर चरणे यदि हाय अनुराग, कृष्ण बिना न्यत्र तार नाही रहे राग।
कृष्ण के चरणों में यदि राग हो जाता है, भक्ति हो जाती है। देखो संसार में हमारा राग 100% है, ठीक है, उसमें से 20% निकाल लीजिए, कृष्ण के चरण में लगाइए 20%, तो संसार में राग कितना रहा? 80%। उसमें से 50 निकाल दीजिए, इसमें कितना रहा? 50। अब 50 20 हो गया 70, और बाकी रहा 30। उसमें से और 10% निकाल लीजिए, तो इधर कितना हो जाएगा? इधर 80 हो जाएगा, इधर 20 हो जाएगा। जिस दिन एक जमाना था, एक समय था, जो हम कृष्ण को जानते नहीं थे, कृष्ण के प्रति हमारी रुचि नहीं होती थी, और एक जमाना एक समय आ गया, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई, व्यक्ति पागल हो जाता है, व्यक्ति पागल हो जाता है। नेत्र का फल यही है, कृष्ण दर्शन के बिना वो रोते रहे। भक्त का एक लक्षण होता है, वो दिन रात रोता रहता है। हंसना ज्यादा भक्त का लक्षण नहीं है। रुदति अभिक्षणम हसति क्वचित च, वाक् गद गदा द्रवते यस्य चित्तम रुदति अभिक्षणम हसति क्वचित च, विलज्य उद्गायते नृत्यति च मदभक्ति युक्ता भुवनम पुनाति। 11 स्कंद। रुदति, दिन रात रोता है। कृष्णेर चरणे यदि हय अनुराग, एक यहाँ पे राग है उसको हटा के यहाँ लगा दीजिए, बस यही समीकरण है। जितना जितना हम कृष्ण में लगाएंगे उतना उतना वैराग्य हो जाएगा। यदि कृष्ण में हमारा 50% राग हो गया, संसार से हमारा 50% वैराग्य हो गया, कृष्ण से हमारा 80% राग हो गया, संसार से हमारा 80% वैराग्य हो गया, यदि कृष्ण में हमारा 100% राग हो गया, संसार से हमारा 100% वैराग्य हो गया, अब संसार हमारे लिए 0 रह जाएगा। इसलिए बुद्धिमान भक्त संसार को ज्यादा चिल्लाता नहीं है, उसको देखता नहीं है, कृष्ण भक्ति में ज्यादा लग जाता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कृष्णेर चरणे यदि हय अनुराग, कृष्ण बिना अन्यत्र तार नाही रहे राग। कृष्ण 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 मधुरम मधुरम वपुरस्य विभो मधुरम मधुरम, गाओ, मधुरम मधुरम वपुरस्य विभो मधुरम मधुरम बदनम मधुरम मधुरम मधुरम। मधुरम मधुरम वपुरस्य विभो मधुरम मधुरम वदनम मधुरम 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 वपुरस्य विभो मधुरम मधुरम वदनम मधुरम 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 मधुरम। मधुगंधि मृदु स्मितमित दाहो मधुरम 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 मधुरम। भगवान श्री कृष्ण का सर्वांग मधुर है। मधुरम मधुरम वपुरस्य विभो, बिल्व मंगल ठाकुर कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की अंग शोभा मधुर है, पर उससे भी मधुर, देखो यहां 2 बार मधुर है, मधुरम मधुरम बदनम मधुरम, और भगवान श्री कृष्ण का जो मुखारविंद है इसके लिए 3 बार मधुरम है, मधुरम मधुरम बदनम मधुरम, और उस बदन में जब मुस्कान आती है, भगवान श्री कृष्ण जब मंद मंद मुस्कुराते हैं, तो बिल्व मंगल ठाकुर 4 बार मधुरम कहते हैं। मधुगंधि मृदु स्मित तदाहो मधुरम 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 मधुरम। उस मधुराधिपति उस भगवान श्री कृष्ण जो रास रासेश्वर है, राज राजेश्वर है, श्री राधा के प्राण धन है, वे हमारे नेत्र पथ के वस्तु बने। इसी आशय के साथ, इसी आशीर्वाद के साथ हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं।